एकत्र ज्ञानोगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो है तो अदृश्य, पर हमारी जिंदगी इसी पर टिकी है। अमेरिका का बिजली ग्रिड, मतलब ये पूरा जाल है ना बिजली का।
हाँ, जिस पर हमारे फोन चार्ज होने से लेकर इंडस्ट्री चलने तक सब कुछ निर्भर है।
बिल्कुल। और हम आज बात करेंगे ग्रेचन बाकी की किताब द ग्रिड के बारे में। स्रोत बताते हैं कि ये जो अदृश्य सा सिस्टम है, ये अब काफी मुश्किल में है।
हाँ, और ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, इसमें दुनिया भर के लिए, यहाँ तक कि भारत के लिए भी बड़े सबक हैं। हमारी आज की चर्चा इसी किताब के दो विस्तृत सारांशों पर आधारित है।
तो ये इतना जरूरी क्यों है आज? मतलब बिजली तो आ ही जाती है ज्यादातर टाइम।
बहुत पुराना है, उलझा हुआ है, और अब नई जरूरतों के सामने सच कहें तो हाँफ रहा है।
नई जरूरतें जैसे
जैसे जैसे सोलर पावर, विंड पावर, हमारे गैजेट्स की लगातार बढ़ती भूख, और फिर क्लाइमेट चेंज का असर, तूफान वगैरह। तो अगर ये ग्रिड फेल होता है
तो असर बहुत बड़ा होगा हम सब पर।
बिल्कुल। तो आज हम इसी विशाल अनदेखे ढांचे की कहानी खंगालेंगे। ये बना कैसे, आज क्या दिक्कतें हैं, और आगे क्या हो सकता है।
चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि ये किताब लिखी किसने है, ग्रेचन बाके। और दिलचस्प बात यह है कि वो कोई इंजीनियर नहीं है।
हाँ, न ही कोई अर्थशास्त्री, वो एक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी है, मतलब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, मैकगिल में पढ़ाया भी है।
अच्छा, तो मानव विज्ञानी का नजरिया कैसे अलग है इस मामले में?
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो ग्रिड को सिर्फ तारों और खंभों का ढेर नहीं मानती, वो इसे एक सामाजिक तकनीकी चीज कहती हैं।
सामाजिक तकनीकी मतलब?
मतलब ऐसा सिस्टम जिसे इंसानों की संस्कृति, उनके इतिहास, उनकी राजनीति, उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षाओं ने मिलकर बनाया है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये हमारी कहानी का हिस्सा है।
तो वो सिर्फ ये नहीं देखती कि ये कैसे काम करता है, बल्कि ये देखती हैं कि ये ऐसा क्यों बना, इसके पीछे की कहानियां क्या हैं।
सही कहा, वो उन कहानियों, उन मेटाफर्स, उन भूले हुए इतिहासों को कुरेदती हैं जिनसे ये ग्रिड बना है। वो इंजीनियरिंग की मुश्किल भाषा को एक दिलचस्प मानवीय कहानी में बदल देती हैं।
तो वो सिर्फ एक मशीन का पोस्टमार्टम नहीं कर रही?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पूरी सभ्यता और उसकी ऊर्जा के बीच के रिश्ते को समझ रही हैं। इसीलिए वो इस अनदेखे पर इतने जरूरी विषय पर बात करने के लिए एक बहुत ही यूनिक और भरोसेमंद आवाज हैं।
ठीक है, तो अब आते हैं किताब पर। ये है किस बारे में, मतलब एक निचोड़ क्या है इसका?
निचोड़ ये है कि ये किताब अमेरिकी बिजली सिस्टम की एक जरूरी और थोड़ी डरावनी हेल्थ रिपोर्ट है। ये बताती है कि जो चीज 20वीं सदी का कमाल मानी जाती थी, वो अब 21वीं सदी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है।
थोड़ा और बताइए इसके बारे में।
किताब का जो मेन तर्क है वो ये है कि अमेरिका का बिजली का ढांचा, जो कभी दुनिया में बेस्ट था, अब बहुत पुराना, नाजुक और उपेक्षित हो चुका है। मतलब वो किसी भी दिन बड़े पैमाने पर ठप हो सकता है।
बाप रे।
हाँ, और दिक्कत ये है कि ये आज की जरूरतों के लिए बना ही नहीं था। जैसे हमारे कंप्यूटर और डेटा सेंटर को एकदम परफेक्ट स्टेबल बिजली चाहिए, वो ये दे नहीं पाता। या फिर जो नई सोलर और विंड एनर्जी आ रही है, जो रुक रुक कर चलती है, वो इसके लिए बिल्कुल नई पहेली है।
तो ये किताब हमें कहां से कहां तक ले जाती है, पूरी कहानी बताती है?
हाँ, एक तरह से ये ग्रिड की जीवनी है। ये शुरू होती है बिजली के गोल्डन एज से, एडिसन और टेस्ला की वो फेमस करंट वॉर,
एसीडीसी वाली लड़ाई।
हाँ, वही, जिसने एसी जीता। फिर आते हैं सैम्यूल इंसुल, जिन्होंने बड़े बड़े पावर प्लांट और एक ही इलाके में एक ही कंपनी वाला मॉडल बनाया। फिर ये दिखाती है कि कैसे 70 के दशक के बाद चीजें बिगड़ने लगी। डीरेगुलेशन हुआ, नियमों में ढील आई और निवेश कम हो गया, सिस्टम कमजोर होता गया।
और फिर आज की दिक्कतें।
जी, फिर किताब आज के डबल अटैक पर फोकस करती है। एक तरफ हमारी डिजिटल दुनिया जिसे परफेक्ट पावर चाहिए, दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड, जो पुराने ग्रिड के लिए कह सकते हैं एक टेक्निकल नाइटमेयर है। और आखिर में ये भविष्य की तरफ देखती है, स्मार्ट ग्रिड, माइक्रो ग्रिड, बैटरी स्टोरेज, इन सब समाधानों की बात करती है। बेसिकली ये किताब हमें जगाने की कोशिश है कि भाई इस सिस्टम को फॉर ग्रांटेड मत लो।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब के हिसाब से आज की प्रॉब्लम समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये ग्रिड बना कैसे था, इसका लॉजिक क्या था।
बिल्कुल, तो कहानी शुरू होती है एडिसन के डीसी और टेस्ला के एसी से। एसी जीत गया क्योंकि वो लंबी दूरी तक जा सकता था, लेकिन ग्रिड का जो असली आर्किटेक्ट था वो था सैमुअल इंसुल।
हाँ, आपने जिक्र किया था।
हाँ, उसने एक बड़ा प्रैक्टिकल आइडिया दिया। उसने कहा, देखो, हर गली में 5-6 अलग अलग कंपनियों की बिजली की तारें बिछाना तो बेवकूफी है, खर्चा बढ़ेगा।
हाँ, बात तो सही है।
तो उसने कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल मोनोपोली का, यानी एक इलाके में बिजली सप्लाई करने का हक एक ही कंपनी को मिले। बदले में वो कंपनी सरकार का रेगुलेशन माने, कीमतें कंट्रोल में रखे और सबको भरोसेमंद बिजली दे।
अच्छा, ये ट्रेड ऑफ था, मोनोपोली लो पर रेगुलेशन मानो।
एग्जैक्टली, और उसका फोकस था बड़े सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट बनाने पर, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो, मतलब बड़े प्लांट से प्रति यूनिट बिजली बनाने का खर्चा कम आए। और यही मॉडल फिर पूरे अमेरिका में फैल गया।
तो ग्रिड का जो डीएनए था वो तभी सेट हो गया, बड़ा हो, सेंट्रलाइज्ड हो, एक जगह से कंट्रोल हो, बिजली एक ही तरफ बहे, पावर प्लांट से उपभोक्ता तक,
प्रिडिक्टेबल हो।
बिल्कुल,
यही उसका मूल डिजाइन था। लेकिन फिर आया गिरावट का दौर,
70 के दशक के बाद वाला।
हाँ, 70 के दशक में तेल का संकट आया, तो वो जो सोच थी कि बिजली हमेशा सस्ती और भरपूर मिलेगी वो टूट गई। फिर आया डीरेगुलेशन का दौर, यानी नियमों में ढील दी गई।
ये सोच करके कंपटीशन आएगा तो बिजली सस्ती होगी।
हाँ, यही सोचा गया था, लेकिन बाकी कहती हैं कि नतीजा काफी गड़बड़ हुआ। वो जो पुरानी एकीकृत कंपनी थी जो बिजली बनाने से लेकर घर तक पहुंचाने तक सब देखती थी, वो टूट गई। अब बिजली बनाने वाले अलग, तारें और ट्रांसफॉर्मर संभालने वाले, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले अलग हो गए।
तो दिक्कत क्या हुई इससे?
ने में पैसा लगाने का कोई साफ फाइनेंशियल इंसेंटिव किसी के पास नहीं बचा।
ओह, मतलब ग्रिड की सेहत की जिम्मेदारी बढ़ गई और किसी की नहीं रही।
कुछ हद तक यही हुआ, रखरखाव टाला जाने लगा, अपग्रेड्स पोस्टपोन होने लगे, और नतीजा सिस्टम धीरे धीरे बूढ़ा और कमजोर होता गया।
और फिर वो 2003 वाला ब्लैकआउट हुआ।
हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट, वो इसका परफेक्ट उदाहरण है। ओहायो में सिर्फ एक पेड़ की डाली एक हाई वोल्टेज लाइन से छू गई, सिर्फ इतनी सी बात।
और उससे क्या हुआ?
उससे एक के बाद एक सिस्टम फेल होते चले गए, जिसे कहते हैं कैस्केडिंग फेलियर। और देखते ही देखते अमेरिका और कनाडा में 5.5 करोड़ लोग बिना बिजली के।
अरे बाप रे, 5.5 करोड़!
जी हाँ, और बांके कहती हैं कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये दशकों की उपेक्षा, वो टलते हुए रखरखाव का नतीजा था। सिस्टम इतना नाजुक हो चुका था।
समझ गया, तो ये तो हुई पुरानी कहानी। अब आते हैं 21वीं सदी की नई चुनौतियों पर।
हाँ, अब दो बड़े प्रेशर हैं ग्रिड पर। पहला है डिजिटल युग का। हमारे कंप्यूटर्स, सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, इन सबको चाहिए परफेक्ट पावर।
परफेक्ट पावर मतलब एकदम स्टेबल।
हाँ बिल्कुल स्टेबल, जरा सा भी उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन इन सेंसिटिव मशीनों को खराब कर सकता है। पुराने ग्रिड के लिए ये संभालना मुश्किल है।
और दूसरा प्रेशर जो शायद ज्यादा बड़ा है
वो है रिन्यूएबल एनर्जी का आना, सोलर और विंड।
हाँ, ये तो अच्छी बात है ना, क्लीन एनर्जी।
अच्छी बात तो है, लेकिन पुराने ग्रिड के डिजाइन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, पुराना ग्रिड बना था बेस लोड पावर के लिए।
बेस लोड मतलब?
मतलब कोयला या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 24 घंटे 7 दिन एक जैसी भरोसेमंद बिजली बनाते रहते हैं। ग्रिड इसी स्थिरता का आधी था।
अच्छा,
लेकिन सोलर और विंड ऐसे नहीं है, वो तो मौसम पर निर्भर है। कभी धूप है कभी नहीं, कभी हवा चल रही है कभी बंद। ये जो रुक रुक कर बिजली आती है ना, इंटरमिटेंसी।
हाँ, ये इंटरमिटेंसी वाला पंगा तो है।
हाँ, यही इंटरमिटेंसी उस सिस्टम में खलबली मचा देती है जो स्थिरता के लिए डिजाइन किया गया था।
वो कैलिफोर्निया का डक कर्व इसी को दिखाता है शायद।
बिल्कुल सही, वो ग्राफ एकदम साफ दिखाता है। दिन में जब खूब धूप होती है तो सोलर पैनल इतनी बिजली बनाते हैं कि ग्रिड से डिमांड एकदम नीचे चली जाती है। ग्राफ में ये हिस्सा बतख के पेट जैसा दिखता है।
अच्छा,
लेकिन शाम को जैसे ही सूरज ढलता है सोलर पैनल बंद हो जाते हैं, और उसी वक्त लोग घरों में आकर लाइट, टीवी, एसी वगैरह चलाते हैं, तो ग्रिड पर लोड अचानक से आसमान छू लेता है। ये ग्राफ में बतख की गर्दन जैसा लगता है।
तो ये जो अचानक ऊपर नीचे होता है लोड,
ये पुराने पावर प्लांट्स और खुद ग्रिड पर जबरदस्त स्ट्रेस डालता है। और एक और बात, छतों पर लगे सोलर पैनल्स।
हाँ, वो तो बढ़ रहे हैं काफी।
हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करते हैं, मतलब बिजली अब सिर्फ पावर प्लांट से घर नहीं आ रही बल्कि घरों से वापस ग्रिड में भी जा रही है। बिजली अब दो तरफा बह रही है,
जो कि पुराने वन वे सिस्टम के लिए बिल्कुल नया है।
एग्जैक्टली, पुराना सिस्टम इसके लिए बना ही नहीं था।
तो बाका का कहना है कि सिर्फ पुराने ग्रिड की मरम्मत करने से, उसे थोड़ा मजबूत करने से काम नहीं चलेगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं कि हमें सिर्फ पैचवर्क नहीं करना, भविष्य एक ऐसे ग्रिड का है जो इंटरनेट जैसा हो, ज्यादा फैला हुआ मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, ज्यादा लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, और ज्यादा समझदार मतलब स्मार्ट।
तो समाधान क्या है फिर? पहला आपने कहा स्मार्ट ग्रिड।
हाँ, पहला है स्मार्ट ग्रिड। इसमें सेंसर लगे होते हैं, डेटा एनालिसिस होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये खुद ही पता लगा लेता है कि कहाँ गड़बड़ी है, बिजली का रास्ता बदल सकता है, और ये हमें भी रियल टाइम में बताता है कि कब बिजली महंगी है, कब सस्ती, ताकि हम अपना यूज मैनेज कर सकें।
अच्छा, ये तो काफी फायदेमंद लग रहा है। और दूसरा?
माइक्रोग्रिड।
माइक्रोग्रिड,
इन्हें आप छोटे लोकल आत्मनिर्भर बिजली के सिस्टम समझ सकते हैं।
जैसे?
जैसे मान लीजिए कोई अस्पताल है, या कोई यूनिवर्सिटी कैंपस, या कोई छोटा कस्बा, वो अपना माइक्रोग्रिड बना सकता है। वो मेन ग्रिड से जुड़ा भी रह सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए, जैसे तूफान आ जाए या मेन ग्रिड ठप हो जाए, तो वो मेन ग्रिड से अलग होकर आइलैंड मोड में भी काम कर सकता है, अपनी बिजली खुद बनाकर।
अरे वाह, ये तो लोकल लेवल पर बड़ी सुरक्षा देगा।
बिल्कुल, ये रिजिलियंस बढ़ाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है,
बैटरीज, ऊर्जा भंडारण।
हाँ, ऊर्जा भंडारण यानी एनर्जी स्टोरेज, बड़े पैमाने पर बैटरी टेक्नोलॉजी। ये सोलर और विंड की इंटरमिटेंसी वाली जो दिक्कत है ना,
कि वो रुक रुक कर आते हैं।
हाँ, उसका ये सबसे अच्छा समाधान है। आप दिन में बनी सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर लो, और शाम को या रात में इस्तेमाल करो। इससे ग्रिड पर लोड भी बैलेंस होता है, और रिन्यूएबल एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल भी होता है।
और इससे वो प्रोस्यूमर वाला आइडिया भी मुमकिन होता है।
हाँ बिल्कुल, भविष्य में हम सिर्फ बिजली के उपभोक्ता या कंज्यूमर नहीं रहेंगे, बल्कि उत्पादक भी होंगे, मतलब प्रोस्यूमर। हम अपनी छत पर बिजली बनाएंगे, जरूरत से ज्यादा हुई तो बैटरी में स्टोर करेंगे या ग्रिड को बेच देंगे।
ये तो पूरा नजरिया ही बदल देगा बिजली को लेकर।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े विषय या संदेश उभर कर आ रहे हैं। पहला तो ये कि ये ग्रिड अदृश्य है, और इसी अनदेखी ने इसे कमजोर किया।
हाँ, ये अदृश्यता का खतरा, हम इसे इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। किताब का एक मुख्य विचार है, अमेरिकी बिजली ग्रिड एक ऐसे बुनियादी ढांचे का उदाहरण है जो उस दुनिया के लिए बनाया गया था जो अब मौजूद नहीं है। ये सिर्फ पुराना नहीं है, इसका मूल डिजाइन ही आज के लिए ठीक नहीं है।
सही बात है, जैसे अपने अभी होता है, जब तक पावर कट ना हो हम सोचते नहीं कि ये बिजली आती कहां से है, कैसे आती है। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है?
दूसरा है वो पुराने और नए का टकराव। 20वीं सदी की सेंट्रलाइज्ड मैकेनिकल सोच और 21वीं सदी की डिजिटल विकेंद्रीकृत जरूरतें, ये मेल नहीं खाती। जैसे पुरानी मशीन पर नया सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करना।
बिल्कुल, और तीसरा?
तीसरा है वो केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की बहस। इंसुल का बड़ा पावर प्लांट वाला मॉडल बनाम इंटरनेट जैसा फैला हुआ मॉडल, और भविष्य साफ तौर पर विकेंद्रीकरण की तरफ इशारा कर रहा है।
जैसे भारत में भी अब रूफटॉप सोलर काफी पॉपुलर हो रहा है।
हाँ, और इसी से जुड़ा है हमारा रोल बदलना, वो प्रोज्यूमर वाली बात। किताब कहती है, एक सदी तक बिजली के साथ हमारा रिश्ता सरल था, हम निष्क्रिय उपभोक्ता थे। भविष्य मांगता है कि हम सक्रिय भागीदार बने, प्रोज्यूमर। ये एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट है।
चौथा मुद्दा शायद वो डीरेगुलेशन वाला है।
हाँ, डीरेगुलेशन के जो अनपेक्षित परिणाम हुए, ये एक चेतावनी है कि इतने जटिल सिस्टम पर आप सीधे सीधे फ्री मार्केट वाले आइडिया नहीं थोप सकते। ग्रिड की सेहत की जिम्मेदारी बट गई, या कहिए खो गई। किताब में एक जगह कहा गया है, हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो इतनी जटिल और परस्पर जुड़ी हुई है कि कोई एक व्यक्ति, कंपनी या नियामक वास्तव में इसका प्रभारी नहीं है। ग्रिड का नाथ बन गया।
ये अनाथ वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। और पांचवा?
पांचवा ये कि बिजली सिर्फ तार और तकनीक नहीं है, ये एक सामाजिक तकनीकी सिस्टम है। इसमें राजनीति है, अर्थशास्त्र है, हमारी आदतें हैं। इसे ठीक करने के लिए सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि समाजशास्त्री, नीति निर्माता और हम सबको मिलकर सोचना होगा।
और आखिरी छठा पॉइंट?
छठा है नाजुकता से लचीलेपन की तरफ जाना। आज का ग्रिड नाजुक है, एक जगह गड़बड़ी पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। भविष्य ऐसे सिस्टम का है जो झटके सह सके, फेलियर को लोकल लेवल पर रोक सके और जल्दी से ठीक हो सके। रेजिलियंस ही कुंजी है।
तो ये सब तो बड़े आइडियाज हैं, इनका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है?
मतलब है, व्यक्तिगत स्तर पर यह हमें अपनी बिजली की खपत के बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। स्मार्ट मीटर क्यों लग रहे हैं? रूफटॉप सोलर या घर में बैटरी जैसे टेस्ला पावर वॉल लगाने का क्या फायदा है? ये किताब इन चीजों का कॉन्टेक्स्ट देती है। बिजली बचाना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये इस नाजुक सिस्टम पर दबाव कम करने का एक तरीका भी है।
और समुदायों के लेवल पर?
समुदायों और लोकल सरकारों के लिए ये लोकल एनर्जी रेजिलियंस की बात करने का आधार देता है। सोचिए, आपके शहर के अस्पताल या फायर स्टेशन के पास अपना माइक्रोग्रिड हो तो बड़े ब्लैकआउट में भी वो चलते रहेंगे। ये लोकल नेताओं को ऊर्जा नीतियों पर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है।
जैसे भारत में भी कुछ मोहल्लों में सोलर पहल हो रही हैं।
हाँ, और पॉलिसी मेकर्स के लिए तो ये सीधा संदेश है कि भाई पुराने रेगुलेटरी मॉडल से आगे बढ़ो, ऐसे मार्केट बनाओ जो सिर्फ सबसे सस्ती बिजली को नहीं बल्कि भरोसेमंदी, लचीलेपन और मजबूती को भी नाम दें। और हाँ, इसके लिए बड़े पैमाने पर सरकारी और प्राइवेट निवेश की जरूरत होगी।
और जाहिर है, बिजनेस और इनोवेटर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है।
बहुत बड़ा। आप सोचिए, बेहतर और सस्ती बैटरी बनाना, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट सॉफ्टवेयर बनाना, ग्रिड की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, माइक्रोग्रिड डिजाइन करना, ये खरबों डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। ये पूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने जैसा है।
इस पूरी चर्चा से जो बात मुझे सबसे ज्यादा समझ आई वो ये है कि बिजली, जिसे हम बिल्कुल ग्रांटेड लेते हैं, वो दरअसल इंसानी इतिहास और फैसलों का नतीजा है। इसे एक खास लॉजिक से बनाया गया था और अब वो लॉजिक काम नहीं कर रहा। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि बिजली कोयले से बने या सोलर से, हमें पूरे नेटवर्क को, पूरी सोच को ही बदलना होगा।
हाँ, और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात थी इस इतने जरूरी सिस्टम की छिपी हुई नाजुकता और हमारी कलेक्टिव उदासीनता। मतलब हम कितना कम सोचते हैं इसके बारे में। और सबसे अहम पहलू लगा वो लचीलेपन, रेजिलियंस पर जोर। भविष्य ऐसे सिस्टम का है जो पूरी तरह फेल ना हो बल्कि झटके सहकर चलता रहे। और ये भी साफ है कि हम सिर्फ किनारे बैठकर तमाशा नहीं देख सकते, हमें इस बदलाव में एक्टिव रोल निभाना होगा। ये तकनीकी से ज्यादा एक सामाजिक और राजनीतिक चुनौती है, जैसा किताब कहती है।
और श्रोताओं के लिए एक आमदनी विचार छोड़ जाते हैं। अगर भविष्य वाकई विकेंद्रीकृत ऊर्जा का है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी का, जहां शायद हर घर, हर मोहल्ला अपनी बिजली बना और मैनेज कर सकेगा, तो क्या इससे ऊर्जा तक पहुंच और उसका नियंत्रण ज्यादा बराबर होगा, या फिर ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ाएगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सैरांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।